सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं कि जैसे भी बने इस बार हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई शुरुआत करनी ही चाहिए। जो जहां है वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे कहीं और पहुंच करके किसी और पर्याय को प्राप्त करके वो यात्रा शुरू करनी हो। वैसे तो चारों गतियों के जीव अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, पर उस प्रयास की सार्थकता सबसे अधिक मनुष्य पर्याय में है, क्योंकि हम अपने प्रयास का फल भी पाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि प्रयास करे तो वो अपने जीवन को इतना अच्छा बना सकता है कि अरहंत और सिद्ध अवस्था जो कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है उसे भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस प्रयास को किस तरह से हम शुरू करें तो कुछ लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग बातें बताते हैं, अपन पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। कोई कहता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भैया अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, वाणी अच्छी बोलनी चाहिए, यानी मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं उनको जरा ठीक दुरुस्त बना लिया जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा। हमने पिछले दिनों इस तरह का विचार भी किया है कि अपने मन वाणी और शरीर इन तीनों की क्रियाओं को अच्छा बना लिया जाए तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। लेकिन इतना करने मात्र से ही पूरा हो जाए ऐसा भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक वाह्य में शुरुआत करने के लिए आवश्यक है बस, लेकिन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति मात्र इतने से नहीं होगी। जितना भी बाह्य आचरण है उस सब की हमें सलाह दी जाती है, दान करना, पूजा करना, संतोष रखना, ये सब बातें अपन ने पिछले दिनों समझ ली हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने से दृष्टि निर्मल हो जाती है, तत्वों का अभ्यास करने से दृष्टि निर्मल होती है, आपापर का भेद विज्ञान होने से दृष्टि निर्मल होती है। सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन ये सब बहुत बाहरी है। कैसा लगता है जब कोई ऐसा कहे कि इतने दिन से हमने जो कुछ समझा और जो कुछ करा वो सब बिल्कुल बाहरी है, तो अंतरंग कुछ और है क्या? तो कहते हैं कि अंतरंग में तो कर्मों के छह छह उपशम और उपशम से जो विशुद्धि आएगी, जो निर्मलता आएगी, वास्तव में वही कार्यकारी है। अब उस अंतरंग में जो कर्मों का छह छह उपशम और उपशम है वो तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता और उस पर मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या करूं? तो जरूरी है भैया कि जरा कर्मों के बंधन और कर्मों के छह उपशम और क्षय उपशम, इन सब बातों को थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो आज मैंने मन बनाया है कि अपन थोड़ी सी इस बात की जानकारी भी हासिल कर लें कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम निरंतर बांध रहे हैं, कुछ कर्म हैं जिनका कि हम फल भोग रहे हैं और कुछ कर्म हैं जिनको कि हम कर रहे हैं। इतना ही तो देखने में आता है, हम निरंतर कर्म कर रहे हैं, निरंतर कर्म बंध रहे हैं और निरंतर हम कर्मों का फल भोग रहे हैं, तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। जैसे कि कोई टेप करता है और वो टेप में फीड भी होता है और रिवर्स करके उसको हम ही को सुनना भी पड़ता है, जैसा किया है वैसे ही सुनना पड़े। ऐसे ही जो है कर्मों के बारे में भी प्रक्रिया है। और इस लोक में जो छह द्रव्य दिखाई पड़ते हैं सो चार के साथ तो ऐसा कोई मुश्किल वाला काम है ही नहीं, चार द्रव्य तो एकदम स्वतंत्र हैं। वैसे तो छह द्रव्य स्वतंत्र हैं अपने अपने परिणमन में, लेकिन चार द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पर के निमित्त से बिगड़ते नहीं हैं, अपने स्वभाव में ही रहे आते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जो परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आकर के बिगाड़ को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी शुद्ध और अशुद्ध दो अवस्थाएं देखने में आती हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल की ऐसी कोई दो अवस्थाएं देखने में नहीं आती, एक ही शुद्ध अवस्था है। लेकिन जीव और पुद्गल ये दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इन दोनों की साठ गांठ से ये सारा संसार निर्मित हुआ है। हाँ, दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके ही, जैसे कि चूना और हल्दी अगर आपस में मिलें तो लाल रंग की उत्पत्ति होती है। कहां से आया वो लाल रंग, ने हल्दी का है ने चूने का है, लेकिन कहते दोनों की संयोगी पर्याय है। ऐसी जो हमारी यहां पर संसार में वैभाविक स्थिति बनी हुई है उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है। और कब से छोड़ दिया है भैया? पहले हथों का के तिनी अनादि काल से जीव अपने स्वभाव को छोड़े बैठा है। तो क्या उसका वो स्वभाव प्राप्त नहीं हो सकता? कहते ऐसी चर्चा नहीं है, अभी वैसी चर्चा नहीं है कि हम स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते कि हमारा स्वभाव ही खत्म हो गया है। नहीं, वैसी कोई बात ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं, स्वभाव को छोड़े बैठे हैं। स्वभावात अन्यथा परिणमनम विभावा, स्वभाव से विपरीत परिणमन करने का नाम विभाव है। और ये मेरे अभी जो वर्तमान की अवस्था है वो वैभाविक अवस्था है और ये कर्म बंध के कारण ऐसी अवस्था मुझे प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं अपनी उस विशुद्ध और निर्मल अवस्था को प्राप्त करना और बाह्य में बड़ा प्रयास भी करता हूं, पांच पाप छोड़ता हूं, आंशिक रूप से छोड़ता हूं, पूर्ण रूप से छोड़ने का उद्यम करता हूं, विचार बनाता हूं, तत्वों का चिंतन करता हूं, सत्संग करता हूं, मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, दान देता हूं, सब करता हूं, भले कर्म करता हूं, बुरे कर्मों से बचता हूं, लेकिन इसके बाद भी अगर कर्म बंध की प्रक्रिया के प्रति मेरे अंदर अज्ञान भाव पड़ा हुआ है तो मेरे उस अज्ञान भाव से होने वाले कर्म बंध को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज मुझे बैठ के इस बात पे विचार भी करना चाहिए कि इस कर्म बंध की प्रक्रिया को जरा ठीक तो समझ लेवें। कर्मबद्ध की प्रक्रिया को जो ठीक से समझता है वो उन कर्म बंधों को कमती बढ़ती भी कर सकता है, उनको परिवर्तित भी कर सकता है, रोकना चाहे तो रोक भी सकता है। इसलिए कर्मबंध की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात कि जीव और पुद्गल दोनों अपने अशुद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं, इस बात पे विश्वास रखना। जो जीव को त्रिकाल शुद्ध कहा है, शो शक्ति की अपेक्षा से कहा है, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं कहा है। जो जीव शक्ति की अपेक्षा से नहीं होके अभिव्यक्ति की अपेक्षा भी से भी त्रिकाल शुद्ध हो गए तो बाकी शुद्ध होने का उपाय आचार्य भगवंत क्यों कहे हैं, ऐसा टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि अगर जीव त्रिकाल शुद्ध है अभिव्यक्ति की अपेक्षा से तो फिर इस मोक्ष मार्ग के प्रारूपण की आवश्यकता क्या, अति तत्वों के विचार की आवश्यकता क्या थी, वो तो शुद्ध है सो है, अब उसमें क्या करना। कहती शक्ति अपेक्षा शुद्ध है लेकिन अभी पुद्गल के संयोग से और वो अपनी उस शुद्ध अवस्था को भुलाकर छोड़ करके अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है, इसलिए उसके लिए उपाय बताना पड़ते हैं शुद्ध होने के। और फिर वो कहता कि जो चीज शुद्ध ही नहीं है बस शुद्ध कैसे हुई है, तो कहती शुद्ध है इसे शुद्ध हो जाए। तो फिर दूसरा प्रश्न आता कि शुद्ध है तो शुद्ध काय को करने, अब देखो कैसी विभूचन में डाल देते हैं। जो चीज शुद्ध है तो उसको का शुद्ध करने, और जो चीज शुद्ध है नहीं है तो उसको शुद्ध कर कैसे सकत। तो कहते इसी को तो समझना, गुत्थी तो यही है, शक्ति मेरे अंदर शुद्ध होने की है, ये विश्वास मेरी उस आत्मा को शुद्ध होने में कारण बनता है, और वर्तमान में मेरी वैभाविक अवस्था है इस बात की स्वीकृति मुझे शुद्ध होने के लिए प्रेरित करती है। राग द्वेष परिणाम में यहां निरंतर करता हूं, यही मेरी वैभाविक स्थिति है, लेकिन मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मेरा स्वभाव रागी द्वेषी नहीं है, मेरा स्वभाव तो वीतराग ही है, लेकिन ये राग द्वेष मैं अपनी वैभाविक अवस्था में करता हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत। तो कहते मेरे स्वभाव नहीं है, मेरे विभाव रूप है, इसलिए छोड़ने की आवश्यकता। ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि जो कर्म मैं अंतरंग में भाव रूप करता हूं और जो मेरे आत्मा के साथ निरंतर संचित होते रहते हैं और जो इस शरीर के माध्यम से मैं इस संसार में यहां से वहां आवागमन करता हूं, ये भी मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, मेरे राग द्वेष परिणाम भी हैं, मेरे साथ बंधे ज्ञानावरण इत्यादि विभिन्न कर्म भी हैं और ये शरीर भी है। द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों ही जो है मेरे लिए इस संसार में रुलाने वाले हैं, मेरी वैभाविक अवस्था है ये। तो पहली बात कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी अशुद्ध अवस्था में परिणमन कर रहे हैं, इसलिए ये कर्म बंध की प्रक्रिया चल रही और अनादि काल से चलती आ रही है। कर्म अपना फल देते हैं, स्थिति पूर्ण होने पे चले जाते, लेकिन उनकी लगार लगी रहती, जैसे कि दुकान खोली सो संजा हो गई, कहने लगे भाई हमें फुर्सत ही नहीं मिली। कहती क्यों, एक ही ग्राहक निपटाते निपटाते रहेगा, एक ही घोंकेते आए तो बहुत ग्राहक, लेकिन बीच में टूटा नहीं क्रम, इसलिए ग्राहक की लगी रही। जैसे कि एक ही ग्राहक में सुबह से शाम तक दुकान नहीं चलती, लेकिन एक ग्राहक गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया। एक ही कर्म पूरा जीवन भर अपना फल नहीं देता, एक गया नहीं, दूसरा आ गया। और इस तरह से मेरे ये कर्म की प्रक्रिया, नहीं तो लगता है कि किसी भी कर्म की स्थिति इतनी थोड़ो है, ज्यादा से ज्यादा होवे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होवे, ओके बात तो चलो जे है। कहते यहां वो तो अनादि काल से चला रहा कर्म का प्रवाह है, मैं उसकी स्थिति पूर्ण करता हूं, इससे पहले जो है आगे के कर्म की स्थिति बांध लेता हूं, और ये डोर कभी भी टूटती नहीं है। ऐसे ये अनादि काल से कर्म की प्रक्रिया चलती आ रही है। इस कर्म को करने वाला विधाता मैं स्वयं हूं, ये बात मुझे विश्वास में आनी चाहिए। कोई मेरे लिए कर्म कर देता है और बांध देता है, ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति में भी जो है कर्म के तीन रूप दिए हैं, क्रियमाण जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, संचित जो कि हमने पहले से अपने लिए बांध रखा है, और प्रारब्ध जो संचित में से थोड़ा थोड़ा आके उदय में अपना फल दे रहा है, हमें भोगना पड़ रहा है। सारा एक साथ नहीं भोग सकते, ची बोल जाएंगे अपन, हाँ प्राण निकल जाएंगे अगर जितने कर्म बांधे सब रे एक साथ उदय में आ जावे। बड़ा हिसाब है, संचित होते हैं उसमें से फिर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं। हम जैसे परिणाम कर लेवे वैसे और नए बंद करके और उस प्रक्रिया को चलाते रहते हैं। ऐसा ये कर्म बंध का अनादि काल का क्रम है, इसको हमें समझना चाहिए। इस कर्म के कर्ता हम स्वयं हैं, इस कर्म के भोक्ता भी हम स्वयं हैं, और इस कर्म के स्वामी भी हम स्वयं हैं। द्रव्य कर्मों के स्वामी तो हम व्यवहार से हैं, भाव कर्मों के स्वामी हम अशुद्ध निश्चय नए से हैं। वैसे देखा जाए तो न हम करता है, न भोक्ता है, न स्वामी है, हम तो अपने परिणामों के, और वे भी शुद्ध परिणामों के कर्ता भोक्ता स्वामी हैं। ऐसा शुद्ध नए की अपेक्षा से प्ररूपण है, प्ररूपण करने की शैली है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, जितनी हमारी वो स्वाभाविक स्थिति सच्ची है उतनी ही मौजूदा स्थिति भी सच्ची है, ये झूठी नहीं है। हम जैसे कर्मों से प्रेरित होकर के संसार में भटक रहे हैं वो भी वास्तविकता है, और हम इन संसार में भटकाने वाले कर्मों से विश्राम पा करके और अपनी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते, ये भी उतनी ही सच्चाई है। लेकिन इसके लिए कैसा करें जिससे कि ये सारी प्रक्रिया समझ में आ जावे, और इस प्रक्रिया को समझ करके और कर्मों का जो बोझ है उसको हम थोड़ा हल्का कर सकें। हमारा उद्यम तो सिर्फ इतना ही है। तो पहली बात अपन ने समझी कि कर्मकर्ता कौन है, ये जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के करते हैं, कि अकेला जीव ही करता, कि अकेला कर्म ही करता है। कहते अकेला जीव करता तो फिर सिद्ध भगवान के भी कर्म बंद होना चाहिए, और अकेला पुद्गल करता तो पुद्गल को भी सुख दुख का अनुभव होना चाहिए। तो कहते दो ही मिलकर के, और ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन इसका फल किसको भोगना पड़ता है, जीव को ही भोगना पड़ता, पुद्गल को नहीं भोगना पड़ता, ये ध्यान रखना। दोनों की वैभाविक स्थिति है ठीक है, लेकिन जीव अपनी वैभाविक स्थिति में सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसा विचार करके कि मैं स्वयं इन कर्मों का करता हूं, पुद्गल पर यह भार नहीं डाला जा सकता, डाल भी देंगे तब भी क्या होने वाला है। ठीक है, पुद्गल कर्मों के उदय में उनके निमित्त से मेरे राग द्वेष परिणाम होते हैं, लेकिन राग द्वेष परिणाम का कर्ता तो मैं स्वयं ही हूं, मैं ही तो करता हूं। तो भैया पहले ये बात हमारे मन में आनी चाहिए कि कोई और हमारे इन कर्मों का जिम्मेदार नहीं है, कर्मों की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये कर्म मेरे ही किए हैं, लेकिन ये कर्म मेरे किए हैं इसलिए इनसे डरते रहो, ऐसा नहीं। हां, हम लोग कर्म से डरते हैं, कर्म के बंध से नहीं डरते, कर्म के फल से डरते हैं। हां, बंध से डराऊ होते तो आज तक क्या स्थिति होती अपनी, लेकिन कर्म के फल से भयभीत हैं। ये हमारे ऐसे कर्म का उदय ऐसा नहीं आ जावे, ऐसा नहीं आ जावे। अब जैसा बांधा होगा वैसा आएगा। अब आपके डरे से क्या होता। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि वा लोभ है काम वस्यो व्रथा स्वयं तप्यत इति अवादी। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने ठीक ही कहा है। समंत भद्र स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि ये जीव जो है स्वयं यहां पर कर्म करता है, विभेति और मृत्यु से डरता है। न ततोस्ति मोक्षो, मृत्यु से डरता है लेकिन उससे बच नहीं पाता है, मरना पड़ता है। और नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ, रोज मुक्ति की कामना करता है लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। अरे, इस भय और कामना की वजह से ही संसार में जीव रुल रहा है। कर्म उदय में आते हैं और उससे हम भयभीत हैं, लेकिन इच्छाएं और कामनाएं निरंतर नए कर्म बांधती रहती, सो नए इच्छाएं और कामनाएं रुक पा रही हैं, नए कर्मों के उदय से हम भयभीत होने से बच पा रहे हैं। इसी से तो संसार आगे बढ़ रहा है। कई लोगों की तो ऐसी मान्यता है कि कर्म तो पुद्गल जन्य है, आत्मा का उसमें कुछ नहीं है। जब तो ऐसा है कि जैसे गाय के गले में रस्सी डरी है, सो रस्सी रस्सी में बंधी है, गाय में थोड़ी बंधी। कैसा भला उदाहरण जान पड़ता है। ऐसे उदाहरण से अपन कैसे जल्दी बच जाते हैं, है अपने को बचा लेते। लेकिन अच्छा, एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो है अपने हाथ में रस्सी लिए चला जा रहा है और वह रस्सी बंधी है गाय से, ये रायचंद जी का या किसका उदाहरण है। वो पूछते हैं अपने शिष्यों से कि बताओ कौन बंधा है। कहते महाराज, इसमें क्या बात है, गाय बंधी है रस्सी से, सामने सामने दिख रहा है। कहती बात तो सही है, गाय बंधी हुई दिखाई पड़ रही रस्सी से, लेकिन हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर रस्सी छूट जावे तो कौन कौन के पीछे दौड़ेगा। अब समझ में आई कि कौन कौन से बंधु है। कहले आदमी दौड़ेगा गाय के पीछे, तो कहले बंधु को है रस्सी से, गाय बंधी के आदमी बंधु। दिखता क्या है, दिखता तो रस्सी से बंधी हुई गाय है, आदमी तो उसकी रस्सी पकड़े है, छूटा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे ही अपन मान लेते हैं कि कर्म आकर के कर्म से बंध जाते हैं, मैं तो उससे पृथक ही हूं। सो ऐसे धोखे में नहीं रहना। कर्म कर्म से आकर के नहीं बनते हैं। आत्म कर्मणो अन्योन्य प्रवेशानु प्रवेश आत्म को बंधा, आत्माओं कर्मों का जो एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ है दूध और पानी की तरह, वैसा ही वही बंध है। ऐसा बंध हमारे बीच हुआ है कर्मों का, और उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। ये बात अलग है कि वो बाह्य किसी निमित्त के मिलने पर होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं है। जैसे भैया हमने एक उदाहरण पहले भी दिया था, जब किसी चीज की संयोगी पर्याय हो तब उसमें ये उदाहरण घटित हो जाता है। जैसे कि पूछा जावे कि लड़का किसका है, मताई को है कि पिता को है, अब बताओ, बता सकते आप, तो कैसा कहना पड़ेगा। अब नाना की गोद में अगर बैठा हुआ है और नाना से पूछी जाए कि कौन को आए, हमारी बिटिया को आए, तो बेटी का तो है ही। और अगर दादा की गोद में बैठा हुआ है तो जरा दूसरी बात होगी, दादाजी कहेंगे हमारे लड़के का है। अब बताओ दो ही में झगड़ा हो जाए अगर नाना में हो दादा में, बीके हमारी मोड़ी को है, बीके क्या रिवा हमारे लड़का को है। अब ऐसे ही अपन लड़ने लगते हैं कि ये जो कर्म है वो पुद्गल के हैं कि जीव के हैं। अब बताओ दोनों को कोई भी कह देगा कि अज्ञानी हो, दोनों का है। ऐसा ही अपने को विचार करना चाहिए कर्म के बारे में कि जीव के अपने विकारी भावों से, कर्म के निमित्त से यह कर्म की बंध की प्रक्रिया चलती है। शुद्ध अवस्था में तो जीव और पुद्गल दोनों ही अपने शुद्ध परिणमन में लगे हुए हैं, उनका वैभाविक परिणमन नहीं होता है। पर यह वैभाविक परिणमन, इसमें जीव का भी हाथ है और पुद्गल का तो है ही। जीव का हाथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि फल उसको भोगना पड़ता है, सुख और दुख का अनुभव उसको होता है। इसलिए बचने का उपाय किसको करना चाहिए? जीव को करना चाहिए। जीव नहीं बांधे हैं और जीव ही उनको तोड़ने का उपाय करेगा। पुद्गल ने न बांधी आए न पुद्गल उनका उपाय करेगा। बात समझ में आई? इतनी ही बात समझ में आई कि ये कर्म कैसे हमारे हैं? आज मुझे यही कहना था मुख्य रूप से कि ये कर्म हमारे हैं, इस बात का भरोसा तो करो। ये कर्म हमारे हैं तो अब हमारे हैं तो भैया हम इनको काटें कैसे? अब जोन चीज अपनी हो वो को छोड़ी कैसे जाए? तो कहते नहीं, ये मेरे वैभाविक परिणमन के सूचक हैं, मेरा स्वभाव नहीं है ये। इसलिए कोई कहे तो कह सकता कि ये मेरे नहीं है, मेरा स्वभाव तो इनसे पृथक है इसलिए मेरे नहीं है। पर वर्तमान में मुझे जो सुख दुख भोगना पड़ रहा है वो इन्हीं कर्मों से भोगना पड़ता है और मेरे ही बांधे कर्म हैं, ऐसा भी मुझे मानना पड़ेगा। दोनों दृष्टियां सही हैं और कर्म मैंने बांधे हैं इसलिए मैं उनको काट सकता हूं, ये विश्वास लेकर के आज वापिस लौटना पड़ेगा। फिर कल सीखेंगे अपन ये बात कि इन कर्मों को कैसे काटेंगे, ये बंधते कैसे हैं और फिर ये काटेंगे हम कैसे, कितने विभिन्न प्रकार से बनते और कैसे कैसे हमें फल देते हैं और इनको हम काटेंगे कैसे। पर काट हम सकते हैं इस बात का विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं और बात पूरी करता हूं, इतना ही पर्याप्त है क्योंकि थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। क्या हुआ, एक बार एक बहुत बढ़िया जंजीर बनाने वाला कलाकार था, लोहे की जंजीरें बनाता था, सांकलें जिसको अपन कहते हैं। और बड़े बड़े राजा लोग कैदियों को बांधने के लिए उसकी सांकलें जंजीरें खरीदा करते थे। और विशेषता ये थी कि जिस जंजीर पर उसकी सील लगी हुई है वो जंजीर कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी मजबूत वो जंजीरें बनाता था। प्रसिद्धि थी उसकी जंजीरों की। और एक बार ऐसा हुआ कि कोई अपराध उस कलाकार से हो गया तो उस कलाकार को भी कैद कर लिया गया और कैद करके जंजीरें डाल करके हाथ और पैर में और जेल ले जाया जा रहा था और वो मुस्करा रहा था। एक साधु देखते हैं कि ये कैदी क्यों मुस्करा रहा है, बड़ा आश्चर्य करते हैं कि लगता है कि कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वरना जंजीरों में बंधा हुआ और मुस्करा कैसे सकता है। वो पीछे पीछे हो जाते हैं कि देखें बात क्या है। और वे जेल तक जाते हैं, उस कैदी को जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है और बंद करने में अभी थोड़े 5 मिनट ही हुए थे और वो कैदी फूट फूट के रोने लगता है। तो साधु जी वहीं खड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि थोड़ी देर पहले जंजीरों से बंधा हुआ मुस्कुरा रहा था, अब ऐसी कौन सी इस पे मुसीबत आ गई जो कि ये रोने लगा। तो प्रेम से जाके उससे कहा कि भाई मैं बहुत देर से तुझे देखता हूं, तू अभी रास्ते में जंजीरों से बंधा मुस्कुराता आ रहा था और अब सहसा जो है यहां आकर के रोने लगा। तो कहता बाबा जाओ अपना काम करो, मैं तो विपत्ति का मारा क्या आपसे बात करूं। तो कहती, नहीं भाई तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हम सब भी शायद इसी तरह से विपत्ति के मारे और दुखी हैं, और कोई अपन से अपना दुख पूछे तो अपन दुख बताने में भी दुख महसूस करते कि अब का बताएं हम, और दुख ना होगा अगर अपना दुख बताएंगे तो। लेकिन साधु बार बार उससे कहते हैं कि कुछ तो कहो, अच्छा यही बता दो कि रास्ते में आते समय क्यों मुस्करा रहे थे, ये मत बताओ कि यहां आके क्यों रोने लगे। कहते कि बताऊंगा तो फिर दोनों ही बात बताऊंगा। कहते अच्छा बताओ, थोड़ा सांत्वना दे करके कि शायद कोई उपाय हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा विपत्ति से बचने का, कुछ तो बताओ। कहते महाराज मेरे अंदर ये विश्वास है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी जंजीर क्यों ना हो मैं उसे आसानी से तोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं जंजीरें बनाने का काम करता हूं। मैं जानता हूं कि कहां कौन सी जंजीर बनाने में गड़बड़ी होती, मैं उसे झट से तोड़ सकता हूं वहां से। और जब मेरे हाथ में और पैर में जंजीरें पहनाई गई थी तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगा और कैद से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं मुस्कुराता हुआ चला आ रहा था, लेकिन जब इस जेल में आकर के मैंने देखा कि ये जंजीरों पर तो मेरी सील लगी हुई है, तब से मैं बहुत उदास हूं, क्योंकि मेरी जंजीर की प्रसिद्धि यह है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तो साधु के हंसने की बारी थी, कहने लगे कि तू कितना अज्ञानी है, दूसरे की बनाई जंजीरें तो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन अपनी बनाई जंजीरें मैं कैसे तोड़ूं, क्योंकि मेरे बनाई हुई जंजीरों की प्रसिद्धि तो यह है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। ये तेरा भ्रम है, क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर, बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं होती कभी भी, बनाने वाला ही बड़ा होता है, बनाई गई चीज कृति बड़ी नहीं होती कलाकार से। इसलिए तुम थोड़ा साहस करो, जब तुमने जंजीरें बनाई हैं तो तुम उनको तोड़ भी सकते हो। भैया इतनी बात सुनकर के साधु की, और उसे तो बोध जागृत हो गया कि ठीक तो कह रहे हैं, जब मैंने जंजीर बनाई है तो मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन आज तक हम और आप जो संसारी जीव हैं उनको ये भरोसा नहीं होता है, हमें तो चाहिए कोई और चाहिए, हमारे बांधे कर्मों को काटने वाला कोई और चाहिए, कोई और आ जावे और हमारे बांधे कर्मों से हमें मुक्त कर देवे, महावीर स्वामी आ जावे और कोई तीर्थंकर आ जावे, ये जी कैसे हमारे कर्म कट हैं। नहीं भैया, किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने बांधे कर्मों को काटने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने बांधे कर्मों को काटने के लिए सिर्फ जागृति की आवश्यकता है। सोए सोए कर्म बांधे हैं, जागते ही साथ क्षण भर में टूट जाते। कहते हैं कि किसको बांध लिया था, हनुमान को या किसको बांध लिया था, सो रहे थे जब, और जैसे ही वे उठे तो सारी जंजीरें एक अकेला हाथ हिलाने से और सब टूट गई थी। हम सोए हुए हैं इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया है, हम भयभीत हैं, जब जागते हैं तो भी देख करके भयभीत हो जाते हैं कि अरे मैं तो कर्म बंध से बंधा हुआ हूं। कहते नहीं, अगर कर्म हमने बांधे हैं तो किसी और से छुड़ाने नहीं जाना है, उनको छुड़ाने के लिए तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें ही प्रयास करना है। मैं सोचता हूं दो बातें अपन ने तय कर ली कि कर्म हमने अपने लिए स्वयं बांधे हैं, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, और इसी तरह जब हमने अपने लिए बांधे हैं तो हम ही उन कर्मों को छुड़ाने के लिए कोई उद्यम करें तो ही उससे बच सकते हैं, अन्यथा ये कर्म बंध की प्रक्रिया अनादि काल से चली आ रही, अनंत काल तक चलती चली जाएगी, और हम उसी के बीच इन बांधे गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगते हुए, हर्ष और विषाद, सुख और दुख का अनुभव करते हुए संसार में रुलते रहेंगे। इसलिए अगर इससे बचना है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास कैसे करेंगे इस पर अपन फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ कि बांधे गए कर्म कैसे मैं काटूं, इसके लिए मेरे भीतर साहस उत्पन्न हो। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञाग्न स्वरूप तुम्हारा है, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अभिनश्वर मणियां, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। चाहो द्रव्य जान वेखो बंद विध भान वेखो सपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो ये ही जिन वाणी है, धवल मंगल दान रवा कुले इन ग्रहे मुनि नाथ कल की सूचना देना। कल ज्ञान सागर जी महाराज के वो है
परम पूज्य श्री क्षमा सागर जी महाराज,
आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि के
बस सागर जी महाराज नमस्कार। कल परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है, उस संदर्भ में कल 8 बजे हम सभी को यहाँ आना है, उसमें चित्र का लोकार्पण आचार्य श्री के चित्र का लोकार्पण श्री प्रतिदिन आचार्य श्री की सामने पूजन और उसके बाद
परम पूज्य मुनि संघ के प्रवचन होंगे, आप सभी उसमें आकर के और पुण्य लाभ प्राप्त करें। क्षेत्र के अनावरण और दीप पूजन के लिए आप पहले से ही अपने नामों का तैयार करके और अपने नाम यहाँ पर ले सकते हैं।
करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंता दीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं, एक ही दिशा में विचार की प्रक्रिया को ले जा रहे हैं कि कैसे हो, जैसे भी संभव हो, हमारा शेष जीवन अच्छा बने। अच्छाइयाँ हमारा अपना स्वभाव है, बुराइयाँ हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी अपनी अज्ञानता है। यदि मैं उस अज्ञान को दूर कर दूं, तो वे बुराइयाँ भी दूर हो जाएंगी और मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसा हमने पिछले दिनों अनुभव किया है, जाना भी है। अज्ञानता मेरी सबसे बड़ी यह है कि मैं शरीर को आत्मा मानता हूं या कि शरीर मेरा है, ऐसा मान करके शरीर की ही सेवा टहल में लगे रहता हूं। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र से मिलने गया और घोड़े पर बैठ के गया और उसने घोड़ा नीचे बांध दिया और झटपट मित्र के यहां ऊपर पहुंचा, तो मित्र ने पूछा कि अरे इतनी भरी दोपहरी में कैसे आए, पांव पैदल चल के आए क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो अपने घोड़े पर बैठ के आया हूं। अच्छा घोड़े पर बैठ कर के आए, अच्छा बैठो। और उस मित्र को बिठा दिया और भागा भागा वो जो मित्र था वो नीचे गया और लगा है घोड़े की सेवा टहल में, क्योंकि मित्र को तो घोड़े ही लेके आया है, तो जो लेके आया है उसकी सेवा टहल होनी चाहिए, जो उस पर बैठ के आया है उसकी क्या। हाँ कैसा लग रहा है सुनकर के कि कितना अज्ञानी है अपन, कितनी जल्दी दूसरे को अज्ञानी कहने में जरा भी नहीं चूकते हैं, कितने जल्दी अपन निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अपने बारे में अगर कोई दूसरा कह दे कि बड़े अज्ञानी हो तो कैसा लगने लगता। वो बहुत देर तक, 2 घंटे बीत गए, घोड़े को नहला रहा है, पंखे से हवा कर रहा है, घास डाल रहा है, बढ़िया बढ़िया पानी पिला रहा है ठंडा, और मित्र ऊपर बैठा हुआ है परेशान, किया बाता होगा मित्र, बाता होगा कहाँ चला गया। जाकर के उसने देखा कि देखूं तो कहाँ क्या कर रहा है, तो देखा तो वो तो घोड़े की सेवा में लगा हुआ है। उसे दया आती अपने मित्र पर, वो समझाता है उससे कि जिस पर मैं बैठ के आया हूं ठीक है उसकी सेवा तुम कर रहे हो, पर मुझे क्यों भूल गए, मैं भी तो 2 घंटे से बैठा हूं। ये तो एक बात छोटी सी घटना है, हम सबके जीवन में भी तो ऐसे ही घटित होता है। हम इस शरीर में बैठ करके इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, और ये शरीर ही हमें यहां से वहां ले जाता है, इस गति से उस गति में। दूसरा बदल लेता हूं मैं, दूसरे प्रकार का शरीर धारण कर लेता हूं, वहां जैसा आवश्यक शरीर है मनुष्य और त्रियंच है तो मैं औदारिक शरीर धारण कर लेता हूं, देव और नारकी बनता हूं तो मैं वैक्रिक शरीर धारण कर लेता हूं। इन दोनों प्रकार के शरीर से मेरा बहुत परिचय है, और 2 शरीर तो मेरे साथ हमेशा लगे हैं, कार्मण शरीर और तेजस शरीर। इन शरीरों में ही मैं अपनी यात्रा करता हूं, और इन ये मान करके कि ये शरीर मेरे लिए बड़ा उपयोगी है, मेरे काम आता है, हम इसकी सेवा में लग जाते हैं। और कभी कभी तो हम शरीर में ही आत्मा का भ्रम कर लेते हैं, आत्मा को उससे पृथक मान ही नहीं पाते हैं। ये हमारी अपनी अज्ञानता है, इस अज्ञानता के चलते ही हम इस संसार में बुरे हैं, भले नहीं बन पा रहे हैं। भले बनने के और बहुत से उपाय हैं, हम बाहर से कर लेते हैं वे सारे उपाय, अच्छा विचार करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, अच्छी क्रियाएं करते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, 3-3 समय करते हैं, सारी शुभ क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये शुभ क्रियाएं मेरे जीवन को थोड़ा बहुत तो शुभ बनाती हैं, भला बनाती हैं, लेकिन मेरी बुराइयां फिर भी मेरे भीतर बनी रहती हैं। मैं क्या करूं जिससे कि मेरी बुराइयां भी हटती चली जाएं और मेरी अच्छाइयां धीरे धीरे प्रकट होती चली जाएं। अज्ञानता को दूर करना इसलिए पहले जरूरी है, और वो दृष्टि की अज्ञानता भी हो सकती है, वो ज्ञान की अज्ञानता भी हो सकती है, और वो आचरण की अज्ञानता भी हो सकती है। जिस दृष्टि से हमें इस संसार को देखना चाहिए वो दृष्टि अगर नहीं है, जिस तरह हमें अपने आत्मा का बोध होना चाहिए वो बोध अगर हमारे नहीं है, और जैसी हमारी आत्मलीनता या कि जैसा हमारा व्यवहार और आचरण होना चाहिए वो भी ठीक नहीं है, तीनों ठीक नहीं है, इसीलिए तो हम अपने जीवन को पूरी तरह अच्छा नहीं बना पा रहे। तो हमने पिछले दिनों इन तीनों को ठीक करने का बाह्य में जो उपक्रम हो सकता है वो उपक्रम किया है। क्या करें, अंदर कुछ ऐसा थोड़े ही है कि जैसे अपन बर्तन होवे तो बर्तन को भैया बाहर भी मांज लो, उतनक भीतर हाथ डाल के और मांज लो, सो होगा साफ भीतर बाहर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि हम बाहर से मांज लेवें तो भीतर भी पवित्र हो ही जावे, और भीतर कुछ ऐसा तो है नहीं कि हाथ डार के मांजो जा सके। कई बार तो ऐसा मन में आता कि जैसे यहाँ कहीं और कर्म रखे होते, भरे होते तो अपन खोलते तैसे वो पोंछ पांच के अच्छो चमका के ठीक कर लेते हैं, मलिनताओं को हम ऐसे दूर कर लेते। मलिनता मेरा स्वभाव नहीं है, मलिनता है तो मेरी, राग द्वेष है तो मेरे, लेकिन मेरे स्वभाव नहीं है, वे मेरे वैभाविक परिणमन है, वो त्रैकालिक भी नहीं है, वो बहुत तात्कालिक है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या करें उन सब से हम बच नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें पिछले दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बाह्य में हम परिवर्तन करते हैं तो बाह्य परिवर्तन की झलक धीरे धीरे भीतर भी पड़ने लगती है, और हमारे आचरण में परिवर्तन आने से हमारी दृष्टि में, हमारे ज्ञान में भी परिवर्तन आता है। तीनों चीजें इस तरह हम देखें कि दृष्टि बदलने पर जैसे ज्ञान और चारित्र समीचीन हो जाता है, ऐसे ही भैया चारित्र अगर हमारा थोड़ा सा वाह्य में कषाएं मंद होवे तो अंतरंग में आत्मा के ज्ञान प्राप्ति के उपायों की तरफ थोड़ी रुचि जागृत होती है। कषाय की तीव्रता में तो अपने आत्मा का ज्ञान करने की रुचि ही नहीं होती, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है। तीव्र कषायी व्यक्ति को तो इस बात का कुछ विचार ही नहीं होता। तो वाही आचरण से कषायें मंद करके भी हम अपनी दृष्टि निर्मल बनाने का उद्यम कर सकते हैं, या फिर दृष्टि निर्मल हो जावे तो वाही में जो है अपने आचरण को संभाल सकते, संभल ही जाता है। दोनों चीजें हैं। महाराज ने अभी उस उदाहरण से यही तो स्पष्ट कर दिया कि वाही में भी झूठा आचरण भी उसने झूठ मूठ 8 दिन के लिए भी अंगीकार किया था, लेकिन वो 8 दिन का वाही आचरण अंतरंग के परिणामों को निर्मल करने में सहायक बन सकता है। ऐसा न समझना चाहिए कि वाही आचरण तो हम जब लेंगे, जब हमारा अंतरंग शुद्ध हो जाएगा, जब हमारी दृष्टि जो है ठीक हो जाएगी तभी वाही आचरण लेंगे। है तो चर्चा ऐसी, ऐसा नहीं है कि ऐसी चर्चा नहीं आती, ग्रंथों में आती है कि भैया अकेले वाही आचरण से क्या होगा। द्रव्यान योग की पद्धति तो यही है, वो कहती कि अकेले वाही आचरण से क्या होगा, जब तक स्वपर का भेद विज्ञान ने हो जावे तब तक वाही आचरण कार्यकारी नहीं है। सो बात तो ऐसी है, लेकिन क्या करें, जब हम उतना नहीं कर पाते हैं तब फिर हमारा कल्याण तो हमें करना ही है। जब ये उपाय सधता दिखाई नहीं पड़ता तो दूसरा उपाय है चरणानियोग की पद्धति से चलते हम, सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा हो गई, बस हो गो सम्यक दर्शन हो गो, अब ज्यादा हिसाब नहीं बनाऊंगा, अब ले लो आचरण। अब कहां तक देख रहे हैं कि जो धर्मामीटर तो देनेंगे भगवान के नाप के, देख लियो कि सम्यक दर्शन होगा, सफर को वेद विज्ञान होगा, उसको फिर ले लियो, हमने तो ले लो, अब हो तो न हो इसो, हमें भगवान पे श्रद्धा है कि भगवान ने ऐसे ही कहा है। सो कोई व्यक्ति चरणानि योग की पद्धति से वाही आचरण करके अपने अंतरंग को निर्मल बनाने की प्रक्रिया करे तो उसको अज्ञानी ने कहो भैया, वो भी जो है धीरे धीरे अपना कल्याण कर लेगा। अपन ने इतनी सब बातें और दूसरे दूसरे ढंग से समझी हैं, और फिर जो है अपन किस बात पे आ गए थे कि हमारे दिन भर में हम कुछ कर्म करते रहते हैं, कुछ कर्म हमारे बंधते रहते हैं, कुछ कर्म का फल हम भोगते हैं, ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कर्म उदय में आते हैं, हमारे परिणाम भले और बुरे बनते हैं, उन भले बुरे परिणामों से फिर नए कर्म हम संचित कर लेते हैं, और वो जो क्रिया हुई वर्तमान में उसका भी आसपास असर तो पड़ता ही है। ऐसा जो है तीन तरह का कर्म हम निरंतर करते हैं। तो जो कर्म हमारे बंद रहे हैं उन पे हमारा कोई बस है क्या? जो कर्मों का उदय आया है उस पे कोई बस है क्या हमारा? और जो क्रिया हम कर रहे हैं उस पे कोई बस है क्या हमारा? इतना विचार कर लो, किस किस पे हमारा बस है और किस पे हमारा बस नहीं है। जिस पे हमारा बस नहीं हो वैसे उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर जिस पे बस है, जो अपने वश में है, वो तो हम कर सकते हैं। अच्छा बताओ भैया, कर्म कैसे प्रकार के बांधना है जी, हमारे बस में है कि नहीं? हमारे वश में है। कर्म भले बांधना है कि बुरे बांधना कि बिल्कुल नहीं बांधना जी, हमारे बस में है कि नहीं? जो कर्म अज्ञानता पूर्वक मैंने बांध लिए हैं उन कर्मों का उदय आवेगा उसमें मेरा कोई वश है क्या? उसमें मेरा कोई वश नहीं है। उदय आने पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन उदय मुझे तकलीफ देगा या कि सुख पहुंचाएगा ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। असाता के उदय में भी मैं साता का अनुभव कर सकता हूं अपने पुरुषार्थ से, और साता के उदय में भी मैं दीनहीन दुखी होकर के अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, ये मेरे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कर्म उदय में आएगा उस पर तो मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन उदय में आने पर मैं कैसा व्यवहार करूंगा ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। और जैसा मेरा पुरुषार्थ होगा वैसा आगे के लिए कर्म बंद होगा। ये कर्म के बांधने का छोटा सा एक सिद्धांत है। जैसे कि हम जो भी मन वचन काय की क्रिया करते हैं उस सब से कर्म आते हैं, और जैसी कषाय होती सो हमारे साथ वे ठहर जाते और हमें वैसा फल देते हैं। इतना ही तो है। अब मेरा इन सब पे वश है कि नहीं है? योग और कषाय के द्वारा ही मेरे कर्मों का बंधन होता है। मन वचन काय की क्रिया और मेरी कषायें ही जो है कर्मों को आमंत्रण देती हैं और रोक करके रखे रहती हैं। इतना ही तो है। अब मुझे जो है इसमें समझना है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि एक पंडित जी एक गांव में पहुंचे और वहां मंदिर पहुंचे तो देखा कि कोई नहीं है। माली से कहा कि भैया चार पांच जनों को बुला तो ले आओ। अब माली क्या समझे कि काय को बुलाया है, सो उसने चार पांच जनों को बुला के ले आया। पांच जने आए, उसमें से पंडित जी ने देखा, कह रहे जो तो रिक्शा वाला को ले आओ। सोचें कि भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ। एक दूसरा व्यक्ति था, थोड़ा सा पंडित जी को लगा कि ये भला जान पड़ता है, काम कर देगा, तो उससे कहा कि भैया हम तुम्हारे गांव में नए आए हैं, संजा को जाने हैं, फलानी ट्रेन से जे हैं, रिजर्वेशन तो करवा लो। सो वो चला गया रिजर्वेशन करवाने। तीन जनों से कही कि आओ बैठो, हम कछु बातें सुनाए तुम्हें धर्म की है? अब उन तीन में से धर्म की चर्चा सुनाते सुनाते घंटे भर हो गया, और घंटे भर के बाद जो है उसमें से एक व्यक्ति से परिचय निकल आया और उसने कहा कि हम भी यहीं पर रुकेंगे आज, तो उसके साथ जो है रुकने का तय हो गया संजा तक के लिए। अब बताइएगा, ऐसे ही तो कर्मों के बारे में करते हैं। मन वचन काय की क्रिया से कर्मों को बुला लेते हैं और फिर बाद में किसी कर्म को दो मिनट में निपटा देते, किसी को आधा घंटा में निपटा देते, और किसी को घंटे भर में, और किसी को बिल्कुल संगे ही संजा तक, और कई कई जिंदगी तरह रखे रहते हैं। देखो उसको दो मिनट में कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ, और तुम चले जाओ उस स्टेशन तक आधा घंटा, उसको रोक लिया, बाकी को वचन का सुनाई, सो घंटा भर उनके साथ में रहे, और एक परिचय निकल आया, सो उसके साथ संजा तक का हिसाब बना लिया। ये तो सामान्य सा उदाहरण है, ऐसे ही कर्मों के साथ होता है और ज्यादा कठिन नहीं है। हम मन वचन काय की क्रियाओं से कर्म बुलाते हैं और जैसी हमारी कषाय, जैसा राग भाव और जैसा द्वेष भाव होता है, वैसा ही उतनी देर के लिए कर्म का हमारे साथ रुकना और ठहरना हो जाता है। हमारे इस कर्म बंध की प्रक्रिया में तीन चीजें काम आती हैं, और उन तीन चीजों में से एक पे हमारा वश नहीं है, दो पे हमारा पूरा वश है। बस इतना ही समझ लेना। पहली चीज है मेरे कर्म बंध में मेरा मोह का उदय सबसे ज्यादा कार्यकारी होता है। जितना जिसका मोह होगा उसके कर्म के बंध का उतना ही अधिक रेशियो ज्यादा होगा। कर्म बंध की सारी प्रक्रिया अगर देखी जाए तो मोह के उदय में ही होती है। दसवें गुण स्थान तक तो मोह का उदय चलता ही है, उसके बाद जो कर्म आते उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है। मोह में मेरे दर्शन मोह है और चारित्र मोह है। मेरी दृष्टि को बिगाड़ने वाला, मेरे ज्ञान को बिगाड़ने वाला, मेरे आचरण को बिगाड़ने वाला, सबको बिगाड़ने वाला अगर देखा जाए तो मोह नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण तो मेरे ज्ञान को थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं, दर्शन को कम ज्यादा कर देते हैं। कोई काम करना चाहूं तो अंतराय वंतराय डाल देते हैं, शरीर को जरा अब अलग ढंग से बनाने वाला नाम कर्म है, और ऊंचा नीचा करने वाला गोत्र कर्म है, एक भाव में रोके रखने वाला आयु कर्म है, जे ज्यादा बिगाड़ नहीं करते। जीवन ही को विकृत कर देवे वो ज्यादा खराब है। चार लड्डू मिलने थे या चार हते वो में से दो मिले कछु हर जानी है भैया, एक मिलो तो भी हर जानी है, एक कनू का मिल गया तो भी हर जानी है, और चार ही मिल जावे और चार ही में बिस डलो हो तो बहुत हर जाए। बताओ, हाँ बताओ आप, चार में से एक थोड़ा ही मिल गया कि हम कहते के मोई में चिपक के रह गए वो, मना थोड़ा स्वाद तो आओ, और अगर चार ही मिल जाते और चार ही में बिष डलो हो तो का काम की हती। तो ये विष जैसे जीवन को मारता है, मोहिनी कर्म भी जो है मेरे जीवन को सबसे ज्यादा नष्ट करता है। मेरे दर्शन मोह और चारित्र मोह, मेरे ये जो राग द्वेष परिणाम है वो सब चारित्र मोह है, और मेरी दृष्टि की जो मलिनता है, मिथ्यात्व है, वो सब जो है वो मेरा दर्शन मोह है। तो पहली चीज इस कर्म बंध की प्रक्रिया में मेरा अपना मोह, मोह का उदय कहना चाहिए, और दूसरा मेरा अपना वर्तमान का पुरुषार्थ, और वर्तमान का पुरुषार्थ और उसके साथ मेरी अपनी कर्म बंधन की प्रक्रिया के प्रति अज्ञानता, गाफिलता। कर्म कैसे बंधते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होना भी कर्म बंध का एक कारण है, और पुरुषार्थ की हीनता होना भी कर्म बंध का एक कारण है, और मोह का उदय तो सब जीवों को है। कषायोदया तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य, कषाय के उदय में जो तीव्र परिणाम मैं कर लेता हूं वो मेरे चारित्र मोहनी और कर्म के बंध का कारण बनता है। मंद कषाय में भी मैं अपने परिणाम तीव्र कर लेता हूं, ये मेरा अपना पुरुषार्थ है। कषाय का मंद उदय भी होता है, फिर भी अगर परिणाम तीव्र हो जावे तो बहुत कर्म का बंध होता है। तो देखो, कर्म का उदय होवे वो ज्यादा हमारे लिए कर्म बंध की प्रक्रिया में उपयोगी नहीं है, या कि मुश्किल में डालने वाला नहीं है। मुश्किल में तो डालता है उसके साथ मेरा अपना परिणाम। कर्म के उदय में मेरा तीव्र और मंद परिणाम तो होता ही है, मैं अपनी तरफ से भी जो है कर्म के मंद उदय में भी तीव्र परिणाम कर लेता हूं, और कभी कभी तो कर्म के तीव्र उदय में भी जरा सा वातावरण, द्रव, क्षेत्र, काल परिवर्तित करके अपने परिणामों को संभाल सकता हूं। तो मेरे पुरुषार्थ की प्रबलता ज्यादा है, और अगर जो है मेरे कर्म बंध का मुझे ज्ञान होवे, कर्म बंध के बारे में मैं अज्ञानी नहीं हूं, तो भी जो है मैं अपने उस कर्म बंध से बच सकता हूं। एक दादी मां है, घर में लेटी हुई हैं, और लड़का बहू उनके जिम्मे छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, हाथ में रस्सी दे जाते हैं कि झूला रोंग लगे तो हिलाओ जइयो, तुमसे उठते ने बने तो उठियो ने, हैं ऐसा सब सौंप के चले जाते हैं। और दादी माँ बीच बीच में बेटे की वो डोरी हिला देती अपनी जगह से, उठते ही नहीं बनता उनसे, भारी तकलीफ है उनके कमर में, पैरों में खड़े ही नहीं हुआ जाता। और अचानक जो है, और छोटा बच्चा ऊधम करते करते पल्ले में से नीचे गिर जाता है। अब क्या करें दादी अम्मा, उठते ही नहीं बनता, लेकिन हिम्मत करके उठती हैं, अकेली उठती नहीं है, पल्ले तक जाती हैं, जाती अकेली नहीं, बेटे को उठा करके पल्ले में लिटा देती हैं, चुप कर देती और अपनी जगह आकर के, जी कहां से आ गई शक्ति बताओ, ये शक्ति कहां से आ गई? मोह की वजह से यह शक्ति जागृत हो गई, और राग की वजह से यह शक्ति जागृत हो गई। और ऐसा अगर मेरे आत्मा के प्रति मेरा राग और मोह जागृत हो जावे, तो मैं चाहूं तो अपने पुरुषार्थ से इन बांधे गए कर्मों को क्षण भर में नष्ट कर सकता हूं। वे कर्म जो मुझे तकलीफ दे रहे थे, उठने बैठने नहीं दे रहे थे, उस मोह की वजह से मैं चाहूं तो अपने, दोनों चीजें हैं, मोह जो है मुझे कर्मों के उदय में ज्यादा मुश्किल में डालता है, और अगर वो मेरा मोह दूसरी जगह बदल जाए, मेरे अपने आत्मा से हो जावे और वहां मोह कमती हो जावे। शरीर से मोह कम हो गया दादी अम्मा का, अबे तक तो उठने पा रही थी, वहां मोह कम हुआ और बेटे से मोह ज्यादा जागृत हो गया, तब ये सारी शक्ति कहां से आ गई? आसानी से ऐसे ही जो है मैं अपने मोह के उदय को थोड़ा सा कम कर लूं और अपने आत्मा की शक्ति को जागृत कर लूं, मेरे अपने पुरुषार्थ से मैं चाहूं तो इन कर्मों के बंध को कमती बढ़ती भी कर सकता हूं। इतना ही कर्म बंध का विज्ञान है कहना चाहिए, समझने वाली चीज है। रोज अपन थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, इतनी बात को क्लियर अपन कर लें, मेरे अपने मोह के उदय में जो परिणाम होते हैं, मेरा अपना जो पुरुषार्थ है और मेरी कर्म बंध के बारे में अज्ञानता है। कर्म बंध के बारे में अज्ञानता यही है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा कोई है जो मेरे कर्म बंध में सहयोगी बनता है। मैं थोड़ी पूरे कर्म बांधना चाहता हूं, ने जे गाली देते ने हमें गुस्सा आऊ तो, उन्हें गुस्सा आऊ तो उन्हें हमारे कर्म बंधते इन्हें करो सब नहीं। ऐसा जो है मन में विचार आता कई लोगों के, ये अज्ञानता है कर्म बंध के बारे में। जितना निमित्ताधीन दृष्टि होती है उतना अधिक जो है हम पराधीनता का अनुभव करते हैं, और जितनी उपादान की तरफ दृष्टि होती है उतना हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि संसार में तो और मोक्ष मार्ग में सब में निमित्ताधीन ही है। निमित्त कुछ नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, निमित्त करता तो है लेकिन मेरे उपादान के बिना कोई कार्य नहीं होता है। निमित्त और उपादान थोड़ा सा समझ लें, ज्यादा कठिन चीज नहीं है। जिसमें कार्य होता उसे उपादान कहते और जिसके सहयोग से होता उसको निमित्त कहते, और ज्यादा विभूचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कठिन बनाने की जरूरत है। निमित्त उपादान की चर्चा को भारी कठिन हो गई है, अति बहुत आसान। अरे जिसमें कार्य हो वैसो उपादान और जिसके सहयोग से हो वैसो निमित्त, बिना सहयोग के तो होता नहीं। भीतर हुई है छायक सम्यक दर्शन, लेकिन केवली शुद्ध केवली के सहयोग के बिना नहीं हुई है, उनके पादमूल में ही हुई है। हाँ हुई है आपके भीतर छायक सम्यक दर्शन, लेकिन छायक सम्यक दर्शन की योग्यता धरे ना हो केवली शुद्ध केवली को पादमूल न हो वे तो सबरी धरी रहे भीतर है। तो ऐसे उपादान को हमने गौण कर दिया, वहां निमित्त की मुख्यता हो गई। और दूसरी तरफ हम दूसरा उदाहरण दे सकते कि चाहे जैसे खोटे निमित्त मिले, हमारे उपादान को हमने संभाल लो है तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकत। तुम कितना गाड़ी दे हमें गुस्सा होने नहीं है, हमने तो तय कर ली। अब तो ये मेरे अपने उपादान की मुख्यता का कथन हो गया, कथन की शैली है। बाकी काम तो निमित्त उपादान दोनों के बिना होते ही नहीं। बाह्य तरोपादि समग्रतेयम कार्येषुते द्रवगत स्वभावा नैवान्न था मोक्ष विधिंस पुंसाम तेनाभिवंद्यस्तुम ऋषिर्बुधाना। हे भगवान, आपने तो ऐसा ही कहा है कि बाह्य और अंतरंग दोनों निमित्त कारणों के मिलने पर ही कार्य होता है, अकेले किसी एक से कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है। जैसे कि ज्यादा दूर नहीं, अपन यहीं पर देख लो, ये स्कूटर कैसे आई हमारी? भैया हम ले आए। तो स्कूटर तो है उपादान हो, मेरे निमित्त से आई है। और अगर कोई दूसरा पूछता कि भैया आए कैसे हो, तो हम कहते स्कूटर से आए हैं, मैं उपादान हो गया, स्कूटर निमित्त हो गई। अब बताओ जरा नहीं, ऐसे है निमित्त उपादान। और ज्यादा अपन मुश्किल में नहीं पड़े और नहीं समझ में आवे तो अपनी रोटी की चर्चा से समझ ले। रोटी रोज बनाऊ तो अपन बनाने वाले और देखने वाले भी देखते हैं रोटी बनती कैसे, काय से बनती रोटी बताओ? आटे से बनती तो उधर हो तो है भंडरिया में बन जावे। अरे हाँ, पहले कही कि आटे से बनती तो हमने बता दी कि भंडरिया में धरो बन जावे। अभी तो कल तो पिसवा के ले आए थे, अभी तक नहीं बनी रोटी, कल को धरो पिसो। हाँ तो रोटी कैसे बनती है? जैसे बनाई जाएगी वैसे बनती है, जैसी बनाने की क्षमता होगी वैसी बनेंगे। उसमें तो जो धरा हुआ है आटा उसमें तो जली रोटी बनने की क्षमता भी है और कच्ची रोटी बनने की क्षमता भी है और अच्छी रोटी बनने की क्षमता भी है, और अगर करैया धर के तेल धरें दे सो पूड़ी बनने की क्षमता भी है। अब कर लो का करने। अब जी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कैसी रोटी बनाऊने, कर्री बनाऊने के कौरी बनाऊने के कच्ची बनाऊने के पूड़ी बनाऊने, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अब जो है बाद में भर जरूर देख लेना कि कौन सी चीज खत्म हो गई और कौन कौन बची रही। तो जब रोटी बन के तैयार हो जाती तो देखते हैं कि वो जोन उसनों तो आटो सुबह तो बड़ा ही गो है ही नहीं है। तो समझना कि आटा तो था उसका उपादान कारण और चकला बेलन और बनाने वाली और आगी और चूलो सब ज्यों को त्यों धरो, ये सब निमित्त थे और कुछ विशेष बात नहीं है। जो बचे रहे हैं बिल्कुल, और जो कार्य रूप परिणमन कर गया है वो उपादान है, और जो कार्य के परिणमन में सहयोगी बना है वो सब निमित्त है। और बता दो कि बिना निमित्त के भाव अकेले उपादान से नहीं हुआ, निमित्त सहयोगी बना है। इस तरह से मैं बाह्य में दृष्टि डालता हूं और उन सब को अपने उपादान के अनुसार निमित्त बनाता जाता हूं और अपने कर्म की प्रक्रिया को गति देता चला जाता हूं। बाह्य निमित्तों को मैं जिस तरह अपने पुरुषार्थ से सुख और दुख का निमित्त बनाना चाहूं बना सकता हूं। मेरा अपना पुरुषार्थ प्रमुख है इस कर्म बंध की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो। मैं अपने पुरुषार्थ से अपने उस मोह को भी कम कर सकता हूं, मैं कर्म बंध की प्रक्रिया के अज्ञान को भी अपने पुरुषार्थ से कम करके कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करके और घटा सकता हूं। आज अपन ने इतनी ही बात सीखी कि इस मोह का जो उदय है वो मेरे लिए बाधक तो है, लेकिन मैं उस अपने पुरुषार्थ से और अपनी अज्ञानता को कम करके इस मोह को जीत करके और अपने कर्म बंध की प्रक्रिया को अपने हाथ से रेगुलेट कर सकता हूँ, अपने हाथ में रख सकता हूँ। अरंत भगवान के प्रति भक्ति का अभाव होना और तिर्यंच और मनुष्यों में करुणा का अभाव होना, ये मेरे मोह का लक्षण है। अब देख लो, तो आज दो ही चीजें मुझे करनी है अपने इस मोह को जीतने के लिए। पुरुषार्थ तो करना ही है मुझे, जब मैंने समझ लिया है कि मेरे मोह की वजह से कर्मबंध की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, मेरे कर्मबंध की प्रक्रिया के अज्ञान की वजह से और मेरे पुरुषार्थहीनता की वजह से ये कर्म मेरे लिए बाधक बन रहे हैं। अब मैंने विचार कर लिया है कि मोह को घटाऊंगा और कर्मबंध की प्रक्रिया को रोज ठीक से जानूंगा और पुरुषार्थ करूंगा, देखें कैसे बनते हैं। बस इतना ही तो निर्णय लेना था अपन को, ले लिया अपन ने निर्णय, और जरा देख लें कि अरहंत भगवान के प्रति जो भक्ति है वो मेरे मोह को कम करती है, और अरहंत भगवान में भक्ति नहीं होना मेरे मोह को बढ़ाने वाली, दर्शन मोह को बढ़ाने वाली कौन सी चीज है? अरहंत भगवान के प्रति, सिद्ध भगवान के या पंच परमेष्ठी के प्रति जो मेरे अंदर अश्रद्धान है वो जो है मेरे दर्शन मोह को बढ़ाने वाला है। तो मैं क्या करूं, उनके प्रति अपने श्रद्धा को रोज रोज बढ़ाऊं, रोज रोज अगर दृढ़ कर सकूं तो दृढ़ करूं, मैं उसे निर्मल बनाने की कोशिश करूं। एक काम, इसलिए श्रावक को लिखा है कि देव दर्शन करे, पूजा करे, स्वाध्याय करे, गुरुओं के सानिध्य में रहे, सच्चे देव गुरु शास्त्र का जैसे बने तैसा सानिध्य प्राप्त करे, तो उसके धीरे धीरे दृष्टि का जो दोष है वो हट जाएगा, दर्शन मोह का दबाव कम हो जाएगा। और दूसरी बात, करुणा भाव रखे सब जीवों पे। मनुष्य तिर्यंच लिखा है क्योंकि इन्हीं के संपर्क में अपन रहते हैं, मनुष्य को ही दया करने का ज्यादा अवसर है, नारकी जीवों को दया का अवसर नहीं है भैया, देवों को भी दया का अवसर नहीं है, मनुष्य तिरंच को ही दया का अवसर है। सो तिरंच भी दूसरे जीव पे दया करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य जो है दूसरे पर दया करने से बचने लगा है। तो अब मुझे अपने राग द्वेष को कम करने के लिए, अपने कषाय को मंद करने के लिए दूसरे पर दया करनी चाहिए। दया करने से मेरी कषाय मंद होती, उसका भला होवे न होवे वो उसके ऊपर निर्भर। कैसे? एक उदाहरण देता हूं आपको और बस बात पूरी कर देते हैं, समझ में आ जाए कैसे हमारी दया कम हो गई है। इसका ही उदाहरण, और दया करनी चाहिए इसके तो बहुत उदाहरण अपन सुन चुके हैं, लेकिन अपनी दया कैसे कम होने से अपने अंदर कषायों की तीव्रता कैसे बढ़ती चली जा रही। ये प्रवचन सार जी की गाथा है, सवेरे से जो है वो बहुत तो याद कर रहा था, लेकिन वो याद नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही याद। उसका अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, अब जरा खोज करके जो है वो बता दूंगा। मुझे रेफरेंस वगैरह देने की बहुत आदत नहीं है, जिसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है उसको रेफरेंस की जरूरत पड़े कि कहाँ लिखो है। अब लिखो ये कहूँ ना कहूँ, हमने कछु अपने मन से तो लिया नहीं, घर से तो लिया नहीं है, सब पढ़ो ये जते होते से। वो रेफरेंस कम दे पाते हम अपनी अज्ञानता ढांकने के लिए उपाय कर रहे, जाने समझियो आप। वैसे याद होना चाहिए रेफरेंस कहाँ से पढ़ा, लेकिन क्या करें याद नहीं, इसलिए हमने कहा आपसे बता भी दिया। क्या हुआ, एक सेठ जी के दरवाजे पर एक भिखारी नया नया आया था, सो वो भीख मांगने चला गया। सबको भी आश्चर्य हुआ और सेठ जी को भी आश्चर्य हुआ कि सेठ जी तो वैसे ही बदनाम है पूरे गांव में कि बेकू को कछु नहीं देत, धक्का दव चाहे तो दे दे, बाकी और कछु नहीं देत। हाँ ऐसा उनके बारे में प्रसिद्धि थी, लेकिन ये भिखारी उनके दरवाजे पर पहुंच गया, आजू बाजू वाले मुस्कुरा रहे कि लगता है नया है, आज ही उतरा ट्रेन से, वो सीधा पहुंच गया सेठ जी की दुकान, देखेंगे बड़ी है लेकिन यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। सेठ जी को भी बड़ा आश्चर्य होता क्योंकि बहुत दिन से कोई भिखारी नहीं आ रहा था, आज ये आया है तो जरा मजा तो लिया जाए इसका, देना वेना तो कुछ है नहीं। हाँ तो उससे बात करने लगे सेठ जी की, लगता है तू नया आया। तो कहती हाँ सेठ जी, इस गांव में नई नया आया हूँ आज ही, और सीधा आपकी दुकान देखी बड़ी सी, तो आपके यहाँ आया हूँ, कुछ तो मिल ही जाए। कहते मिलेगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। कहते क्या सेठ जी? कहते अच्छा, हमारी दो ही आंखें देख के बताओ, एक उसमें से पत्थरा की है और एक सही की है, जा बता दो अच्छा कौन सी पत्थर की आंख है और कौन सही है, तो तुम्हें देंगे हम पैसा। बड़ा व्यंग है, बड़ी चोट करने वाला उदाहरण है ये, हमारी अपनी करुणा पर, हमारी अपनी संवेदनशीलता। थोड़ी देर तो वो देखता है भिखारी और फिर कहता है कि सेठ जी दाई आंख पत्थर की है। पत्थर की मतलब किसी दूसरे त्रियंश वगैरह की लगी होगी, पहले पत्थर की नहीं चलती थी उसको, लेकिन कहते पत्थर ही की है। तो ये वाली आंख आपकी पत्थर की है। सेठ जी बड़े चकित कि भिखारी ने दिया तो जवाब सही है। कहते अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने ये पता कैसे किया कि ये आंख पत्थर ही की है। कहते सेठ जी जो ओरिजिनल है उसमें तो पानी बिल्कुल सूख गया है, इसमें थोड़ा गीलापन देख करके लगा, ये जो आंख भीगी है इसको देख के लगा कि जय भाव चाहिए पत्थर की, आपकी तो वैसे सूख ही गई, आपके में तो आई नहीं सकत पानी, ओरिजिनल में तो आएगा ही नहीं, ये क्या चीज है, ये कहना क्या चाह रहा है वो। हमारे अपने जीवन में किस तरह से हम संवेदनशील शून्य होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं? जितनी कषायें बढ़ती चली जाएंगी उतनी संवेदनहीनता होती चली जाएगी, ध्यान रखना। जिसके भीतर कषायों की जितनी तीव्रता होगी वो उतना कम दूसरे के तकलीफ से भीगेगा, दूसरे के दुख से उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी कषायों, अपनी कषायों की तीव्रता परखना हो तो ऐसे परख लेना कि मेरी कषायें तीव्र हैं, अगर मेरी कषाय जब मंद होगी तब दूसरे के दुख में मेरे आंसू आएंगे, नहीं तो दूसरे के दुख में आंसू नहीं आ सकते। अपनी तकलीफ में तो हर एक कोई रो लेता है, लेकिन दूसरे को दुखी देख के जिसकी आंख गीली हो जाए, दूसरे के दुख की चर्चा सुन के जिसकी आंख भीग जाए, आज तो अगर कोई रो देवे तो क्या माना जाता, नादान है, अज्ञानी है, है? लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये नादानी और अज्ञानता नहीं है, ये तो हमारे कषायों की मंदता का प्रतीक है और हम इतनी बड़ी बात से जो है वंचित हैं, जरा से लोक व्यवहार की वजह से ठीक से रो भी नहीं पाते। रोने का मन हो रहा है अपने बैठे बैठे, अपने कर्मों पर रोने का मन होता, कभी कभी अपनी अज्ञानता पर रोने का मन होता, सो एक तरफ मुंह छुपा करके आंख में आंसू पोंछ लेते हैं कि कोई देख न ले। नहीं भाई, ऐसे तो करुणा का अभाव ही हो जाएगा हमारे अंदर। करुणा का अभाव होना ही मोह का प्रतीक है, और जिसकी प्राणी मात्र पे करुणा है उसका मोह उतना कम उतना ही कम होता चला जाएगा। तीर्थंकर भगवान की प्राणी मात्र पर करुणा होती, वे ही अपना कल्याण करते और प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। इसलिए मेरे अपने इस दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय जो है, जो मुझे कर्म बंध में सहयोगी बनता है, मुझे उसको जीतने के लिए यही उपाय करना चाहिए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो स्वरूप मैंने समझा है उन पर, उन वीतरागी भगवान पर मैं उनकी पूजा अर्चना और श्रद्धान बढ़ाता चला जाऊं और इधर मैं प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखता चला जाऊं, तो जरूर से एक उपाय हो सकता है, मैं इस कर्म बंद की प्रक्रिया से बच सकता हूं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।